नमस्कार भारत, मंगलवार 22 नवंबर, मैं हूं निखिल रंजन। जापान में फुकुशिमा के पास फिर आया है भूकंप। फुकुशिमा संयंत्र के एक रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम बंद हो गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले उभरा नया गठबंधन, नीतीश कुमार की जेडीयू ने अजीत सिंह के लोकदल से मिलाया हाथ।
तंग आ चुकी है, जो 15 साल से राजनीति चल रही है, मुलायम गए तो मायावती और मायावती गए तो मुलायम, और उसमें एक विकल्प वो ढूंढ रही है जनता।
बीबीसी 100 वीमेन सीरीज की पहली पेशकश में आज सुनिए लखनऊ के पास मोहनलालगंज की कहानी। हर बार चुनाव में महिलाओं को कैसे मिलती है जीत?
पार्टी और कैंडिडेट दोनों के लिए वोट पड़ता है। जैसी हवा बन जाए, जनता जैसी सोच ले कि हमको इनको जिताना है।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। जापान के फुकुशिमा प्रांत के पास आए शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी की 10 फीट ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की गई है। सरकारी मीडिया एनएचके के मुताबिक लोगों से तटीय इलाकों से हटकर ऊंचाई वाले इलाकों में जाने की अपील की गई है। रिक्टर स्केल पर 7.4 की तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र फुकुशिमा से 70 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। जापान के मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा है कि भूकंप स्थानीय समय अनुसार आज सुबह 6 बजे आया। फुकुशिमा में 2011 में आए जबरदस्त भूकंप के बाद सुनामी ने परमाणु संयंत्र में भारी तबाही मचाई थी, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए थे। शोधकर्ताओं के मुताबिक चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट जिन हथियारों को इस्तेमाल कर रहा है वो अमरीका और सऊदी अरब ने खरीदे हैं। स्वतंत्र समूह कॉन्फ्लिक्ट आर्ममेंट रिसर्च ग्रुप का कहना है कि पूर्वी यूरोप में बने कई हथियार इराक के उन इलाकों से मिले जिन्हें आईएस के कब्जे से छुड़ाया गया है। ये हथियार सीरिया में सरकार के खिलाफ लड़ रहे विद्रोहियों के लिए थे जो किसी तरह आईएस के हाथ लग रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक इराक और सीरिया में युद्ध में अस्पष्टता के कारण ऐसा हो रहा है। शोधकर्ताओं ने हथियार बनाने वाली कंपनियों और खरीदारों से ज्यादा सतर्क रहने की अपील की है। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के पहले दिन वो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप व्यापार समझौते से बाहर निकलने का रास्ता साफ करेंगे। एक वीडियो संदेश में उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के बाद अपने 100 दिनों का खाका सामने रखा। उन्होंने कहा कि वो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप व्यापार समझौते की जगह सभी देशों से द्विपक्षीय व्यापार समझौते करना पसंद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा।
On trade, I am going to issue our notification of intent to withdraw from the Trans-Pacific.
व्यापार पर मैं Trans-Pacific Partnership से बाहर निकलने के अपने इरादे के बारे में अधिसूचना जारी करूंगा, जो कि हमारे देश के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। इसकी जगह हम अनुकूल द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बात करेंगे, जिससे नौकरियां और उद्योग अमेरिका के तट पर वापस लाए जा सके। ये थे डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव प्रचार के दौरान ये वादा कर चुके थे। करीब 7 साल तक चली बातचीत के बाद इसी साल फरवरी में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यूरोप में चरमपंथी हमलों के खतरा बढ़ने की चेतावनी दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस बात की पुख्ता जानकारी है कि क्रिसमस के आसपास अमेरिकी नागरिकों पर चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट और उसके सहयोगी समूह हमला कर सकते हैं। फ्रांस में 2 साल पहले क्रिसमस के लिए लगे विशेष बाजार में 2 चरमपंथी हमले हुए थे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो की पहली सभा में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल रंजन। जैसा कि आपने समाचारों में सुना, जापान में फुकुशिमा के पास एक बार फिर जबरदस्त भूकंप आया है, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। भूकंप के बाद फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के एक रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम बंद हो गया है। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.4 बताई गई है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए हरिता कांडपाल से।
An intensity 5- earthquake was observed in the Tohoku area and a tsunami warning has been issued.
Once again, a magnitude 7.3 earthquake.
जापान में आज तड़के आए शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है. ये भूकंप फुकुशिमा प्रांत के नजदीक आया है. सरकारी मीडिया एनएचके के मुताबिक सरकार ने लोगों से तटीय इलाकों से हटने की अपील की है. चेतावनी दी गई है कि सागर में 3 मीटर ऊंची यानी कि करीब 10 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं. हालांकि एनएचके के मुताबिक अब तक ओनाहामा तट पर पहुंचने वाली लहरें सिर्फ 60 सेंटीमीटर ऊंची बताई जा रही हैं. भूकंप का केंद्र फुकुशिमा से 70 किलोमीटर दूर जमीन से 11 किलोमीटर नीचे स्थित था. भूकंप के झटके जापान की राजधानी टोक्यो में भी महसूस किए गए. टोक्यो में मौजूद बीबीसी संवाददाता रूपर्ट विंगफील्ड हेस ने बताया.
Not destructive waves, but nevertheless, large numbers of people along that coast were ordered to evacuate.
लहरें विनाशकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को तटीय इलाकों में अपने घर खाली करने को कहा गया था. हमने आज सुबह देखा कि लोग अपनी गाड़ियों में ऊंचाई वाले इलाकों में जा रहे हैं. अभी तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी है और लोग अपने घरों में लौटने का इंतजार कर रहे हैं. रूबर्ट विंगफील्ड हेस के शब्द. इस भूकंप ने 2011 में आए विनाशकारी भूकंप की याद ताज़ा कर दी, जिसके बाद आई सुनामी की लहरों के कारण फुकुशिमा में दाइची परमाणु संयंत्र को भारी नुकसान हुआ था. आज तड़के आए भूकंप के कारण फिर से फुकुशिमा में परमाणु संयंत्र को नुकसान की संभावना को देखते हुए डर बना हुआ है. हालांकि जापान में कैबिनेट के मुख्य सचिव योशीहिदे सुगा ने कहा कि फुकुशिमा में परमाणु संयंत्र के 3rd reactor के कूलिंग सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है. हालांकि अभी तक तापमान बढ़ने के संकेत नहीं है, ना ही दूसरे परमाणु संयंत्र में कोई अनियमितता देखी गई है. उन्होंने कहा कि सरकार ने स्थिति का जायजा लेने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है. एनएचके के मुताबिक फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के संचालक टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी संयंत्र में नुकसान की जांच कर रही है. फिलहाल भूकंप के कारण किसी नुकसान या फिर जानमाल की क्षति की खबर नहीं है, लेकिन भूकंप इतना शक्तिशाली था कि टोक्यो तक इसके झटके महसूस किए गए. 2011 में फुकुशिमा में भूकंप के बाद सुनामी ने भारी तबाही मचाई थी, जिसमें 11,000 से ज्यादा लोगों की या तो मौत हो गई थी या फिर वे लापता हैं.
जापान में जबरदस्त भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है. रिपोर्ट सुना रही थी हरिता कांडपाल.
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम.
बीबीसी हिंदी.
ये बीबीसी रेडियो है और आप सुन रहे हैं निखिल रंजन के साथ नमस्कार भारत. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले एक नया गठबंधन तैयार हो गया है. राष्ट्रीय लोकदल और जनता दल यूनाइटेड ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. दोनों दलों का कहना है कि वो समान विचार वाले दूसरे दलों से भी बातचीत कर रहे हैं. पहले ये दोनों दल समाजवादी पार्टी की अगुवाई में महागठबंधन बनाने की कोशिश में थे. राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख चौधरी अजित सिंह ने उत्तर प्रदेश में महागठबंधन न बन पाने को लेकर मुलायम सिंह यादव पर सवाल उठाया है. वहीं जनता दल यूनाइटेड का दावा है कि उसकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोकने की होगी. पूरा ब्यौरा सुनिए इस रिपोर्ट में, जिसे तैयार किया है वात्सल्य राय ने.
उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित महागठबंधन की परिकल्पना बिखरने के संकेत मिलते ही राष्ट्रीय लोकदल और जनता दल यूनाइटेड ने नया गठजोड़ तैयार करने की कोशिश शुरू कर दी है. बीती 5 नवंबर को समाजवादी पार्टी के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर एक मंच पर दिखे राष्ट्रीय लोकदल और जनता दल यूनाइटेड ने ऐलान किया है कि दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश में गठबंधन करके विधानसभा चुनाव में उतरेंगी. इस गठजोड़ के मकसद पर बात करते हुए अजीत सिंह ने कहा,
उत्तर प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है. वो तंग आ चुकी है जो 15 साल से राजनीति चल रही है. मुलायम गए तो मायावती और मायावती गए तो मुलायम, और उसमें एक विकल्प वो ढूंढ रही है जनता. मेरा मानना है कि लोकदल JDU आर के चौधरी का एक गठबंधन एक बढ़िया विकल्प बन सकता है. इसमें शरद पवार से भी हमारी बात हुई है. उनके जो DP त्रिपाठी ने लखनऊ में घोषणा भी की थी कि इसमें वो हमारे साथ रहेंगे, तो हम कोशिश कर रहे हैं सब लोग इकट्ठे हो जाएं. उसका फर्क तो पड़ता ही है.
समाजवादी पार्टी को छोड़कर आगे बढ़ने के सवाल पर अजीत सिंह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की पहल समाजवादी पार्टी की ओर से ही हुई थी. वो कहते हैं,
मुलायम सिंह जी का फोन आया, शिवपाल को उन्होंने भेजा मेरे पास, शरद के पास भी भेजा, केसी के पास भी भेजा, खुद नीतीश को उन्होंने फोन किया, प्रशांत किशोर से भी दो बार मुलायम सिंह ने बात की। तो बात तो गठबंधन की हो रही थी, लेकिन आखिर में उन्होंने कह दिया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, हम तो मर्जर चाहे कोई कर लो। अचानक मुलायम सिंह ने घोषणा कर दी वो अकेले लड़ेंगे। अभी सवाल तो उनसे पूछना पड़ेगा कि बिहार में उन्होंने यही किया, अभी यूपी में यही किया उन्होंने।
जनता दल यूनाइटेड का उत्तर प्रदेश में खास जनाधार नहीं माना जाता। वहीं साल 2012 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के सिर्फ 9 विधायक चुने गए थे। ऐसे में ये गठजोड़ प्रदेश की राजनीति में कितना प्रभावी होगा, इस सवाल पर जनता दल यूनाइटेड के सांसद केसी त्यागी कहते हैं कि उनकी पार्टी का पूर्वी उत्तर प्रदेश में जनाधार बढ़ा है। उनका दावा है कि इस गठजोड़ का मकसद भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाना है।
हम सिर्फ और सिर्फ भाजपा को नुकसान करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी हमारे निशाने पर नहीं है और हमारी तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं होगा कि धर्मनिरपेक्ष दलों की जो खंडित एकता है उसको हम और खंड में डालें।
हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों की राय है कि राष्ट्रीय लोकदल और जनता दल यूनाइटेड के गठजोड़ से प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों में खास बदलाव आने की उम्मीद नहीं दिखती है। वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान,
वेस्टर्न यूपी में अजीत सिंह की पार्टी का इन्फ्लुएंस है, लेकिन उनका भी पिछले सालों में काफी ग्राफ नीचे चला गया है क्योंकि वो पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म खेलते रहे हैं। जब जब उन्होंने किसी से अलायंस किया, एक तो उनका ये भरोसा नहीं रहता किस वक्त वो किसके साथ जुड़ जाएं, और क्योंकि उनका व्यक्तिगत जो इंटरेस्ट हैं वो ज्यादा प्ले करते हैं, और उनकी जाट पॉलिटिक्स में भी एक सेंध लग गई इस वजह से कि मुस्लिम से अलग हुए, जाट और मुस्लिम मिल करके जब उनको वोट करते हैं बेटर थी, जेडीयू के साथ अलायंस करके कोई बेनिफिट नहीं होने वाला।
जमीनी स्थिति का अंदाजा शायद इन दलों को भी है। यही वजह है कि दोनों दलों के नेता कह रहे हैं कि सभी धर्मनिरपेक्ष दलों को लेकर उनके विकल्प खुले हुए हैं।
रिपोर्ट सुना रहे थे वात्सल्य राय, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय लोकदल में गठबंधन हो गया है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के। और आइए आगे बढ़ने से पहले जरा नज़र डालते हैं कि आज दिल्ली के अखबारों में क्या कुछ छपा है। हरिता कांडपाल आ चुकी हैं तमाम अखबारों को लेकर के स्टूडियो में। हरिता बताइए क्या कुछ
है? अभी हम वात्सल्य की रिपोर्ट सुन रहे थे, उसी पर मैं कार्टून से शुरुआत करती हूँ। जनसत्ता ने आज जो कार्टून छापा है वो इसी से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में जदयू और रालोद में विधानसभा चुनाव के लिए समझौता हुआ, इसमें अजीत सिंह खड़े हैं हैंडपम्प के पास, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सामने खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि तुम्हें बस मेरा हैंडपम्प चलाना होगा। जी, तो ये बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नोटबंदी, जिसकी चर्चा हर रोज़ ही आजकल हम अपने देश में कर रहे हैं कई दिनों से। द हिंदू की मुख्य खबर है कि ग्रामीण इलाकों में नकदी की कमी से निपटने के लिए 35,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने जा रही है सरकार। पिछले 2 हफ्तों से हम इस पर कई खबरें देख रहे हैं और हर रोज़ ही कोई ना कोई घोषणा होती है, एक तरह की कन्फ्यूजन की स्थिति सी नजर
मैनेज कर रही हैं। आपने कैश का प्रबंध कर लिया?
जी, हम कैश का प्रबंध कर रहे हैं धीरे धीरे रोज़, और कई बार हमें लाइनों में भी लगना पड़ा। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इस पर लिखा है कि केंद्र सरकार ने कैश क्रंच यानी नकदी की कमी से जूझ रहे किसानों और व्यापारियों के लिए नियमों में को नया मोड़ दिया है। अखबार लिखता है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन का कुछ हिस्सा कैश में दिया जाएगा और किसानों को बीज खरीदने के लिए पुराने नोट इस्तेमाल करने की भी छूट होगी। अगर कोई ऋण लिया है बैंक से तो 2 महीने की राहत भी मिलने की बात सरकार ने कल कही है। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि विपक्ष इस वित्तीय शोषण के खिलाफ लामबंद हो गया और अब विपक्ष सड़कों पर जो है उतरेगा और इसके खिलाफ मोर्चा निकालेगा। ये तो नोटबंदी की बात हुई। इसके अलावा दैनिक भास्कर में सोनिया गांधी के इंटरव्यू की चर्चा है। कल सोनिया गांधी ने मीडिया में इंटरव्यू दिया है। अखबार लिखता है कि सोनिया गांधी बोली कि मुझे लगता है कि सास की छवि डरावनी होती है, खासकर होने वाली सास की। इंदिरा गांधी की बात है, उनसे सवाल पूछा गया था कि आप इंदिरा जी से मिलने से डरी क्यों हुई थी। इसके अलावा अखबार ये भी लिखता है कि उन्होंने लिखा है कि मोदी और इंदिरा गांधी की तुलना नहीं की जानी चाहिए, जिस तरह कड़े फैसले लेने को लेकर कई बार मोदी और इंदिरा जी की तुलना होती है, उस पर जो उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने ये बात कही थी। इसके अलावा एक और बीसीसीआई को लेकर खबर जो है वो चर्चा में है। बीसीसीआई के लिए कई सिफारिशें लोढ़ा समिति ने की है। सुप्रीम कोर्ट में कल लोढ़ा समिति ने कहा है कि अब जो है बीसीसीआई और इससे संबंध सभी राज्य क्रिकेट संघों के सभी शीर्ष अधिकारियों को पद से हटाने की सिफारिश कर दी है। कहा जा रहा है कि 70 साल से ज्यादा उम्र के जो पदाधिकारी हैं उनको हटा दिया जाए, तो एक और सिरदर्दी।
जी हरिता, ये तस्वीर क्या दिख रही
है? एक तस्वीर जो हर अखबार के पहले पन्ने पर आज छपी है वो है उत्तर प्रदेश में जो जेट उतारे गए हैं हाईवे पर।
अच्छा अच्छा, यमुना एक्सप्रेस वे पर
जी।
तो ये बहुत शुक्रिया हरता इन अखबारों की विस्तृत समीक्षा के लिए। और इस तस्वीर की जो मैं बात कर रहा था, जो आप कह रही हैं कि जेट विमान कल जो है वो उतरे हैं यमुना एक्सप्रेस वे पर। यमुना एक्सप्रेस वे अभी जल्द ही शुरू होने वाला है, वो लखनऊ को आगरा से जोड़ेगा और उसका उद्घाटन कल किया गया। तो ये सवाल सब लोगों के जहन में आ रहा है कि ये जेट विमान क्यों उतारे गए, क्या वजह थी, एयरफोर्स इसके जरिए क्या करना चाहता था। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने पूर्व एयर मार्शल डेनजिल किलोर से बात की।
ऐसे आप जानते हैं कि जब युद्ध होता है तो सबसे पहले टारगेट जिस पर हमला होता है वह हवाई अड्डा, और वहाँ लोग कोशिश करते हैं रनवे को तोड़ने के लिए, क्योंकि सब जहाज बना हुआ शेल्टर्स में छिपाया हुआ है और पाकिस्तान के जहाज जो हमला करते मुश्किल है इन जहाज को उतारना। इसलिए इन लोग कहते हैं कि हम उसका रनवे तोड़ देंगे तो जहाज टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो ये आजकल इसका स्ट्रेटजी दोनों तरफ से, तो हम लोग ये कहते हैं अगर हमारा रनवे खराब हो गया हम कहाँ जाएंगे और क्या करना चाहिए, क्योंकि दूसरा हवाई अड्डा दूर है। तो इसी तरीके से हम लोग सोचा है कि आजकल जो रास्ता बनते हैं बिल्कुल सीधा जाते हैं, काफी चौड़ा है, और अगर हम थोड़ा उसको मॉडिफाई करके वो अपना आप से रनवे बन जाएगा जहां इमरजेंसी में हमारा जहाज उतर जाएंगे वहां। इसी विचार से जो आगरा लखनऊ रास्ता बनाया गया उसमें से दोनों सरकार ने मिलके उसने डिफेंस वाले से बात करते उसने वहां 1-2 मील का स्ट्रेच बना लिया जहाँ रास्ता स्ट्रेटा है, थोड़ा और चौड़ा बना दिया, मगर मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसने PCN बढ़ा दिया 40-100 तक। PCN होता कितना वजन वो रोज ले सकता है, PCN एयरपोर्ट का 100 होता है, रास्ता का 40 होता है, इसलिए वो उसी जगह में वो 100 PCN लगा दिया। तो इसी तरह से वो जो रास्ता है अभी रनवे के लिए हो सकता है।
इमरजेंसी सिचुएशन जब होती है तो हाँ। उसके लिए कितना ट्रैफिक क्लियर करने की जरूरत होगी और किस तरह से ये किया जा सकता है, क्योंकि जब इसको टेस्ट किया गया तो उस हाँ। समय तो सड़क भी क्लियर थी और ये खास तौर पर स्ट्रेच बनाया गया था।
बिल्कुल वहाँ पब्लिक का इनकन्वीनियंस होगा, क्योंकि जब वो रनवे शुरू करने वाला है तो क्या होगा कि दोनों तरफ से ट्रैफिक उधर बंद हो जाएगा और ये रनवे बन जाएगा। उस समय के लिए जो इमरजेंसी है ये एक तरफ रास्ता जो चुना हुआ है वो रोका जाएगा। तुम कहेंगे ट्रैफिक कैसे जाएंगे, एक थोड़े देर 2-3 मील के लिए एक तरफ चलेगा ट्रैफिक, दूसरा तरफ हम लोग एयरफोर्स से चलाएगा।
एयरफोर्स के लिए ये जो एक्सरसाइज है ये कितना मायने रखती है?
बहुत जरूरी चीज है, और भी रास्ता वैसे ही बनेंगे। अभी ये तो आगरा में बनाएगा, हमारा आवश्यकता के हमारा एयरबेसिस हवाई अड्डा जो आगे है पंजाब में राजस्थान में वहां भी बनना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं कि कैसे चले, अच्छा चलता है कि नहीं, इसका क्या प्रॉब्लम्स है, और धीरे धीरे से काफी रास्ते हाईवे जो बन रहे हैं काफी हाईवे में ये फैसिलिटी रनवे का बनाया जाएगा।
2015 मई में भी इस तरह की एक्सरसाइज की गई थी, तब मिराज 2000 को उतारा गया था, इस बार मिराज के साथ सुखोई को भी उतारा गया है, तो और प्लेन्स को भी इस पे टेस्ट किया जा सकता है।
बिल्कुल, अगर 100 NCL PCN होएगा तो सब जहाज अलाइन कर सकते हैं, जहाँ PCN 100 है सब जहाज आ जाएगा।
भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल डेनजिल किलोर से बात कर रहे थे वात्सल्य राय, और ये जान रहे थे कि सड़कों पर विमानों को उतारने का क्या मकसद हो सकता है। और अब हमारी खास सीरीज 100 Women Special, इसमें पहली पेशकश उत्तर प्रदेश के ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र मोहनलालगंज से है। यहाँ ये जो इलाका है वहाँ महिलाएं खेती बाड़ी, दिहाड़ी मजदूरी और प्राथमिक स्कूली शिक्षा से अभी आगे नहीं बढ़ पाई हैं, लेकिन इस सीट की खास बात ये है कि इस इलाके से बाहर की औरतें यहाँ सांसद का चुनाव लड़ी और जीती भी। पूरे देश में किसी एक लोकसभा सीट पर बार बार औरतों का जीतना भारत के लिए खासतौर से किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं, लेकिन ऐसा क्यों है? मोहनलालगंज की पहेली को बूझने के लिए वहां की एक चाय की दुकान पर कुछ मर्दों से बात करने पहुंची BBC संवाददाता दिव्या आर्य।
यहां पर जो औरतें सांसद रहीं उनको क्यों चुना गया? बड़ा कम सुना जाता है कि एक ही संसदीय क्षेत्र से बार बार औरतें चुनी जाएं, और मोहनलालगंज से 16 लोकसभा में से 8 लोकसभा में औरत सांसद चुनी गई हैं, सब अलग अलग पार्टी की भी थी। क्या लगता है आपको क्यों चुनी गई?
अरे इसलिए जो कैंडिडेट खड़ा होगा वही चुना जाएगा।
तो वोट किसके लिए पड़ता है, कैंडिडेट के लिए पड़ता है कि पार्टी के लिए?
पार्टी के लिए, पार्टी बेस पर, जिस पार्टी की लहर रहती है उसी के कैंडिडेट यहाँ से निकलता है।
तो पार्टी वैसे जब यहाँ वोट पड़ता तो पार्टी जो लहर होगी वही जीता है, वैसे कैंडिडेट जीतता है।
पार्टी और कैंडिडेट दोनों के लिए वोट पड़ता है, जैसी हवा बन जाए, जनता जैसी सोच ले कि हमको इनको जिताना है।
तो ये बताइए, जब ये चुने गए पूर्णिमा वर्मा या रीना चौधरी या सुशीला सरोज, तो तब इनके कैंडिडेट के मतलब इनके लिए वोट पड़ा होगा या इनकी पार्टी के लिए?
नहीं नहीं, इनके लिए पड़ा होगा, पार्टी के लिए बात नहीं रही।
तो पर जैसे रीना चौधरी का तो काम ही नहीं था उससे पहले, वो सीधा सांसद के लिए लड़ी, फिर भी उनके लिए वोट पड़ा?
हाँ, पूरा पूरा ध्यान है, हम उस समय मोहल्लागंज में पढ़ रहे थे।
अच्छा।
उस समय जो है उस समय बिल्कुल रीना चौधरी के लिए ही वोट पड़ा था।
क्यों? क्योंकि वो युवा नेता थी
जी, इसी आधार पर पड़ा था। और पहली बार उनकी मीटिंग सर्वप्रथम कारोबीर में पहली बार लगी थी जब वो भाषण नहीं दे पाई।
अच्छा।
हाँ, मैं मौजूद था जब लड़ी थी तब आप भाषण नहीं दे पाई रहे।
अच्छा।
हाँ,
फिर भी लोगों ने मौका दिया उनको और दो बार दिया।
सुशीला सरोज भी शायद दो बार रही।
अच्छा, जो राजनीति में औरतें ज्यादा काम करती हैं कि आदमी ज्यादा काम करते हैं जब एक बार सत्ता उनके हाथ में आ जाती, क्या लगता है आपको?
आदमी ज्यादा काम करते हैं।
अच्छा।
आदमी ज्यादा काम करते हैं, आदमी से हम लोग मिल भी लेते हैं। अब जैसे यहाँ की औरत प्रधान है, हम लोग कभी नहीं मिल पाते भाई, हमसे क्या उनके आदमी कहते हैं तो वो भी अब बड़े आदमी ज्यादा बार बार, एक तो पहली बार उनके दरवाजे जाओ तो 3 घंटा खड़े रहो दुकान छोड़ के, उसके बाद निकले तो बोले कि शाम को मिलना, काम खत्म हो गया।
यदि जनतक देखा जाए तो पुरुष पे ज़्यादा लोग वो समझते हैं, लेकिन हमारी जहाँ तक सोच है वहाँ तक जो है यदि कर्तव्य कर रही हैं, जा रही हैं क्षेत्र में, लोगों से मिल रही हैं, उनके दुख दर्द को समझ रही हैं, तो दोनों के लिए वही समानता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो।
लेडीज भी बहुत भाग रहता है, काम करती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन लेडीज के मिलने में प्रॉब्लम है, कहीं गई हैं तो हम लोग जोड़ देके नहीं मिल सकते। लेडीज भी आए, खूब आए, ये नहीं कहते हैं, हम कहते हैं अगर 100 सीटें हैं तो उनमें 50 लेडीज आए, मगर हम लोग उनसे कहते हैं इसलिए कि जो ज्यादा काम हो सके।
तो यहाँ से इतनी बार औरतें क्यों चुनी गई सांसद, ये नहीं मुझे समझ।
ये कि यहाँ पे लेडीज ज्यादा से ज्यादा जा सकती हैं, आदमी सब अपने काम में लगे हुए हैं, बात ये है लेडीजें लगा दिया लाइन तो लगा दिया, बस ये होता है, लेडीजें संपर्क ज्यादा करती, जेंट्स से संपर्क होता नहीं है।
क्या औरतें मतलब आप कह रहे हैं ज्यादा वोट डालती हैं आप?
वोट ज्यादा वही डालती हैं, ज्यादा इसलिए डालती हैं कि अगर उनको कहीं जाना भी आदमी को कहा अच्छा आप बच्चन गले जाकर डरा लेने।
अरे नहीं, ऐसा तो नहीं,
नहीं ऐसा है,
मतदाता तो जितने आदमी उतनी औरतें हैं, पर ऐसा कोई खास फर्क नहीं है।
भाई अगर हम ये कहते हैं कि लेडीज जीत रही है तो लेडीज का मतलब काम कर रही है तभी लेडीज जीत रही है,
तो मतलब लेडीज काम कर रही है,
जी जी जी,
कंक्लूजन किया जा सकता है।
सबसे ज्यादा समस्या हमारे यहाँ हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है, हर मरीज के लिए व्यवस्था नहीं है कि सही ढंग से उपचार हो सके।
आपको ध्यान है ये सांसदों के कार्यकाल कैसे थे?
कार्यकाल सभी के बिल्कुल खराब थे।
अच्छा,
सही था।
मतलब क्या ऐसा है कि मर्द हो या औरत कोई भी सांसद दिखाई नहीं देता चुने जाने के बाद?
कोई नहीं दिखाई देता।
तो ये थी दिव्या आर्य जो अपनी सीरीज की पहली रिपोर्ट के साथ आपसे मुखातिब थी, और अब आइए रुख करते हैं बिहार का। बिहार के नीतीश कुमार सरकार के एक साल के कार्यकाल के दौरान नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था बिगड़ने को लेकर के आलोचनाएं खूब हुई, लेकिन इसी दौरान नीतीश कुमार ने महिलाओं के बीच सबसे लोकप्रिय कदम यानी पूर्ण शराबबंदी का भी उठा लिया। ऐसे में नीतीश के एक साल के कार्यकाल पर अलग अलग तबके की राय जानने की कोशिश की पटना से सीतू तिवारी ने। सुनिए सीतू तिवारी की ये रिपोर्ट।
त्रस्त थे, मैंने घर से कहा खाने के लिए सब्जी नहीं है, ये अब जो पैसा है ना ले जाकर के घुमटी वाला को दे देते हैं, तुम रखना।
छत्तीस साल की मोनिका कृष्ण ने जब मुझसे ये कहा तो बीते वक्त की पीड़ा और वर्तमान की खुशी दोनों को उनकी आवाज में मैं महसूस कर सकती थी। 13 साल पहले उनकी शादी हुई तो पति संदीप गुप्ता की शराब पीने की आदत ने जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था। संदीप के फुलवारी शरीफ में सोने चांदी की दुकान है, लेकिन उनकी शराब की लत के चलते खाने तक के लाले पड़ जाते थे। लेकिन जीवन की परेशानियों में उलझी मोनिका की जिंदगी में अब सुकून आ गया है। ये सुकून बिहार में शराबबंदी लेकर आया है। मोनिका कहती हैं,
जो नीतीश कुमार किए हैं बहुत सराहनीय कदम है। ये ऐसा कदम है, वही कदम हर स्टेट अगर उठाए तो एक इंडिया एकदम बदल जाएगा।
मोनिका जैसी कश्ती पर सवार बिहार की लाखों महिलाओं के जीवन में सुकून आया है। ये सुकून बिहार का पूर्ण शराबबंदी कानून लेकर आया है, जो नीतीश सरकार ने लागू किया है। हालांकि शराबबंदी कानून के कड़े प्रावधानों को लेकर उसकी आलोचनाएं हो रही हैं, इसमें सुधार के लिए नीतीश कुमार खुद लोक संवाद भी कर रहे हैं। समाज विज्ञानी डीएम दिवाकर कहते हैं कि नीतीश कुमार के महिलाओं से जुड़े ये कदम उन्हें राष्ट्रीय छवि का नेता बना रहे हैं।
महिलाओं के विकास के साथ एक ओवरऑल डेवलपमेंट की राजनीति का एक स्वरूप तैयार करता है, जिसमें महिलाओं की विश्वसनीयता और महिलाओं के बीच नीतीश की विश्वसनीयता बढ़ रही है और इसका लाभ उन्हें अपने राजनीतिक हस्तक्षेप के साथ मिलता है, राज्य के बाहर भी और देश में।
शराबबंदी के अलावा राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दे दिया है। 18 साल की दिव्या बीकॉम की पढ़ाई कर रही हैं। बक्सर की दिव्या कहती हैं कि सरकार लड़कियों को बढ़ावा दे रही है, जो इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि आने वाले समय में महिलाएं बड़ी जिम्मेदारियों में ज्यादा हस्तक्षेप करेंगी। वो कहती हैं,
बक्सर में भी बहुत सारे मतलब स्कूल वगैरह खुले हैं, पहले से चेंज आए हैं। लड़कियों को जो साइकिल मिलने वगैरह था गांव में मिलने लगा है, उससे लड़की लोगों को बहुत डिस्टेंस जाती थी ना कॉलेज, तो अब प्रॉब्लम नहीं होता है।
हालांकि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार साल भर घिरी रही, लेकिन कई आम शहरी इस मसले पर सरकार की आलोचना को मीडिया हाइप करार देते हैं। 4 साल से बिहार में रह रही रीना सिन्हा महाराष्ट्र की हैं। वो अपने 3D केक के लिए बहुत मशहूर हैं। वो कहती हैं कि बिहार के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन यहाँ सब कुछ सामान्य है।
हम महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र में हम बहुत सुने थे बिहार के लिए इतना सारा हाइप, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, ये वो है। अब हमको 4 साल होने आ रहा है बिहार में और यहाँ पे आके हमको इतना ज़्यादा जो हाइप था वो दिखा नहीं है।
रीना के बोरिंग रोड स्थित घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल बिहार की कानून व्यवस्था ठीक होने के सुकून को खारिज करता है। यहाँ पर बीते 25 अक्टूबर से 14 साल की सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता अपने परिवार के साथ धरने पर बैठी है। 14 साल की ये बच्ची चल फिर नहीं पा रही है। परिवार का कहना है कि बार बार जोर देने के बावजूद बच्ची का मेडिकल प्रशासन ने नहीं कराया है। सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता ने BBC से बात करते हुए कहा,
मेरा जिंदगी खराब कर दे सो लोग, मेरे साथ बलात्कार किया, मेरा पूरा जिंदगी खराब कर दे, किसी को जीने वाला नहीं, मेरा घर लग पूरा में जख्म लगा दी, किसी तरह न्याय मिल जाए, सभी के पास गुहार लगा, मुख्यमंत्री के पास, सभी जितना सभी के पास गुहार, मगर कोई सुनने फरियाद सुनने वाला कोई भी नहीं, ये गरीब का बेटी तब नहीं सुनता।
गुस्सा पटना कॉलेज के पास फूल बेचने वाली 55 साल की कमला देवी भी है। वो कहती हैं, गरीब का भला किसी भी सरकार में नहीं।
PMCH में नौकरी था, प्रसाद की जगह पर नहीं होने दिया था, घुसखोर आदमी सब नहीं होने दिया नौकरी, पैसा ले लगे नौकरी छीन लिया था, कैसे हुआ, लड़कन सबसे भी वजह खराब हो गया कि नहीं हुआ।
नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों में आरक्षण, साइकिल योजना, महादलित पर्चियों में महिलाओं का पहला नाम जैसे कई कदम उठाए हैं। इन फैसलों से बिहार की महिलाओं के जीवन में बदलाव भी आए हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं कि बहुत कुछ किया जाना अभी भी बाकी है। सीतू तिवारी, BBC पटना।
लोढ़ा समिति ने कल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए BCCI के शीर्ष पदाधिकारियों को हटाने और पूर्व गृह सचिव GK पिल्लई को पर्यवेक्षक नियुक्त करने की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट BCCI से लगातार कहता रहा है कि वो लोढ़ा समिति के सुधार संबंधी सुझाव को पूरी तरह से लागू करे। इसे लेकर हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली से बातचीत की।
मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि पीछे जितनी सुनवाई हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख देखने को आया है, लोधा पैनल कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे वो अभी तक लागू किए नहीं है BCCI ने। पहले मान गए थे कि कुछ एक उनके रिकमेंडेशंस तो BCCI खुद सोच रहा था कि रिफॉर्म्स करेंगे, लेकिन इस स्टेज पे आना जहाँ पे रिकमेंडेशन ये है कि आप करंट ऑफिशियल उनको हटाया जाए, उनकी जगह GK पिल्लई जी तो बहुत काबिल आदमी, होम सेक्रेटरी रह चुके हैं, बहुत कठिन दौर में भी उन्होंने कई फैसले ऐसे लिए थे जो देश के काम आए हैं, पर यहाँ पे क्रिकेट की छवि, जो बीसीसीआई की छवि है, उसको सबसे बड़ा धक्का पहुंचेगा जब सुप्रीम कोर्ट अगर ये निर्णय लेता है कि इन ऑफिशियल्स को हटाया जाए जो इस वक्त बीसीसीआई को चला रहे हैं, और उसके बाद स्टेट एसोसिएशन पे भी वही उतना ही कड़ा रुख दिखाया जाए, तो मेरे ख्याल से इसे क्या सिग्नल जाता है? अगर आप देखें बाकी क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज हैं, उनको क्या लगेगा कि सबसे अमीर क्रिकेट की बॉडी है बीसीसीआई, लेकिन अब जो है जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात है तो वहां पे बहुत गरीब दिखाई दे रही है।
क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली से बात कर रहे थे आदेश कुमार गुप्त, और अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ चला है, तो आइए प्रमुख समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। जापान के फुकुशिमा में परमाणु संयंत्र से टकराई सुनामी की 1 मीटर ऊंची लहरें। आज तड़के शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी। शोधकर्ताओं के मुताबिक चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट जिन हथियारों को इस्तेमाल कर रहा है वो अमरीका और सऊदी अरब ने सीरिया सरकार के खिलाफ लड़ रहे विद्रोहियों के लिए खरीदे हैं। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया हरिता कांडपाल ने, और आज स्टूडियो संभाला है हेमंत कुशवाहा ने। आपसे 1 घंटे बाद फिर मुलाकात होगी। निखिल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।